संबंध। जिस समय गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है वह क्या करे, इसको भगवान आगे के 70वें श्लोक में बताते हैं।
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मेष्टः स्यामिति मे मतिः।
जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या।
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः।
तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि किंचन मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन लग जाती है, चटपटी लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों-ज्यों नई बातें मिलती हैं, त्यों-त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से पूछना प्रारंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ है। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों-ज्यों त्याग होता जाएगा त्यों-त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता
परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्येष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यो ज्यो पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, क्यों ही क्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यो ज्यो समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा, ज्यो ज्यो समाधान होगा त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी, ज्यो ज्यो रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा, उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुह को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल की याद आती है। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा, निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्याम। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है, विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे तो भगवान को अपने अनन्य भक्त की, उसकी उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ, अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अध्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। इति में मति ही, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ, मया ततम इदम सर्वम, और सब जगह ही मेरे कान है, सर्वतः श्रुतिमल लोके, अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेश के याद में मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है, परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है तो भी उससे मेरे हृदय में तेरे और मेरे सारे संवाद की, अर्थात उत्कंठा पूर्वक किए गए तेरे प्रश्नों की और मेरे दिए हुए गहरे वास्तविक उत्तरों की एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया, साथ ही ढंग से उठना बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा ऐसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा, उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे। परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थ को भावों को न समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को भावों को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साह पूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं।